एरो आवी, एरो आवी। चलो चलो कहानी सुनने चले, सब तैयार? एक दो तीन।
रजा के अब्बा रहमत खान मुगल बादशाह अकबर के शाही दर्जी है। रजा अब्बा के साथ बादशाह के नए कपड़े पहुंचाने महल गया। तब उसे पता चला कि बादशाह कपड़ों के मामले में जरा नखरेले है। मुगल काल के भारत में रजा की होशियारी की प्यारी सी कहानी। कहानी का शीर्षक है रजा और बादशाह। लेखक सुभद्रा सेनगुप्ता। चित्र बनाए हैं तपस गुहा और हिंदी में अनुवाद किया है मनीषा चौधरी। ये प्रथम बुक्स पब्लिकेशन की पेशकश है। आज का दिन बड़ा खास था। रजा ने अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहने हुए थे। आज उसकी मुलाकात एक बड़ी आला हस्ती से होने वाली थी, बादशाह जलालुद्दीन अकबर से, मुगल सल्तनत के महान सम्राट। रजा के अब्बा रहमत खान भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, वो बादशाह के शाही दर्जी थे। बादशाह उन्हीं के हाथ के अंगरखे पहनना पसंद करते थे। जी हाँ, चुस्त चूड़ीदार पैजामा और ढीला कोटनुमा कुर्ता, जिसे अंगरखा कहते हैं, यही थी बादशाह की पसंद की पोशाक। आज सुबह रजा और उसके अब्बा फतेहपुर सिकरी के महल जा रहे थे, बादशाह के गर्मी के मौसम के अंगरखे उन्हें दिखलाने थे। कपड़ों के मामले में राजा साहब काफी नखरेले थे। रहमत खान ने बड़ी मेहनत से अंगरखे बनाए थे, देर रात तक कटाई और सिलाई करी थी। रजा ने भी उनका हाथ बटाया था, सबसे बारीक सुई और बेहतरीन रेशम के धागे से महीन टाके लगाए थे। बसंत की खिली धूप में चारों ओर फूल हंस रहे थे। कबूतरों की गुटरगू सुनते हुए दोनों फतेहपुर सिकरी के महल पर पहुंचे। भाले लिए दो पहरेदार फाटक पर तैनात थे। मैं हूं रहमत खान, जापना का दर्जी, उनके अंगरखों के नए जोड़े लाया हूं, रजा के अब्बा ने कहा। बड़ी मूछों वाले पहरेदार ने भवे सिकोड़ी, क्या बादशाह को मालूम है कि तुम आने वाले हो? जी हुजूर, उन्होंने खुद नमूने पसंद किए थे। यही ठहरो, मैं शाही खिदमतगार को बुलाता हूं, पहरेदार ने अंदर का रुख किया। पहरेदार एक और आदमी को लेकर आया, जिसे देखकर रहमत ने झुककर सलाम किया। गर्मी के कपड़े लाया हूं धनी जी। अच्छा, आओ मेरे साथ, महाराज अभी सोने के कमरे में है, शाही दरबार में जाने से पहले तुमसे मिलेंगे।
ये कौन है अब्बू?
रजा फुसफुसाया। धनी सिंह, ख्वाबगाह में काम करते हैं।
ख्वाबगाह?
बादशाह का निजी महल, जहां उनकी बैठक और सोने का कमरा है।
काफी लंबा रास्ता था। रजा ने चारों तरफ देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई।
मुगलों के महल कितने सुंदर थे, पतले नक्काशीदार खंबे और मेहराब सब लाल रंग के बालूकाश्म से बने हुए। कहीं कहीं पर फुलवारी वाले बगीचे, जिनमें कमलों से सजे तालाब और झिलमिलाते फव्वारे नजर आ रहे थे। रजा ने मन से सोचा कि जन्नत ऐसी ही होती होगी। बादशाह के कमरे के दरवाजे पर इंतजार करते हुए रजा ने धनी सिंह को ध्यान से देखा। दर्जी का बेटा होने के नाते सबसे पहले कपड़ों पर नजर टिकी। लाल और सफेद फूलदार सूती अंगरखा और सफेद चूड़ीदार। धनी सिंह की नागरा की जूतियों की नोक अंदर की तरफ उमेठी हुई थी। उनकी कमर पर कपड़े की पट्टी बंधी हुई थी, जिसे पटका कहा जाता है। पर रजा को सबसे ज्यादा पसंद उनकी चटक लाल रंग की पगड़ी आई, जिस पर सफेद और पीले चौरस और बुनकियों का नमूना था।
आपकी पगड़ी बड़ी अच्छी है धनी जी, वो बोला, बड़ा सुंदर नमूना है।
शुक्रिया, मैं राजपूत हूं और इस नमूने को मेरे देश में बांधनी कहते हैं। कमरे में घुसते हुए रजा का दिल जोर से धड़क रहा था।
मेहराबदार दरवाजों से धूप अंदर आ रही थी। नगीनों के रंगों वाला मोटा रेशमी पर्शियन कालीन उसकी रोशनी में रंग बिखेर रहा था। कमरे में एक खूबसूरत नक्काशीदार पलंग और दो बड़ी सुंदर कुर्सियां थी। कम ऊंचे पलंग पर रेशमी और सुनहरी गद्दियां पड़ी थी। पर्दे भी रेशमी थे। रजा ने झुककर सलाम किया और फिर अपने बादशाह की तरफ देखा। एक खिदमतगार हाथ में डिब्बा लिए खड़ा था और अकबर उसमें से गहने चुन रहे थे। कद में बहुत लंबे नहीं थे, पर उनके एक तलवारबाज के जैसे चौड़े कंधे थे। बड़ी बड़ी थोड़ी तिरछी आंखें, नीचे की ओर मूड़ी मूछे और होठों पर ऊपर एक छोटा सा तिल था। उनके आने की आहट पाते ही अकबर पलटकर मुस्कुराए। आओ रहमत, अंगर के लाए हो, और ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ?
मेरा बेटा रजा हुजूर।
क्या तुम भी सिलाई जानते हो रजा?
सीख रहा हूँ हुजूर, रजा ने घबराया सा जवाब दिया। पर कपड़ा काटने में अभी भी गलती हो जाती है।
सीख जाओगे, तुम्हारे अब्बा सिखला देंगे तुम्हें, अकबर प्यार से बोले।
रहमत ने पोटली खोली और अंगरखे पलंग पर सजा दिए। बेहतरीन मलमल से बने हुए थे और बड़ी बारीक कढ़ाई थी। सभी गर्मी के हल्के रंगों में थे, नींबूई, आसमानी, धानी, हल्का जामनी और झकाझक सफ़ेद। रजा जानता था कि बादशाह का पसंदीदा रंग सफ़ेद था। रहमत ने अकबर को एक सफ़ेद अंगरखा पहनने में मदद करी। धनी सिंह एक बड़ा सा आईना ले आए और राजा के सामने लेकर खड़े हो गए।
कढ़ाई अच्छी है और पहनने में भी आरामदेह है, अकबर खुश होकर बोले। अब जरा पटका बांधो, देखे कैसे लगता है। रहमत ने कई पटके उठाए और अकबर की कमर पर एक आसमानी रंग का पटका ऐसे बांधा कि झालरदार सिरे आगे की तरफ लटके।
नहीं, अकबर अनक कर बोले, ज्यादा हल्का रंग है, हमें जरा शौक रंग चाहिए।
रजा और उसके अब्बा ने एक के बाद एक कई पटके बांधकर दिखाए, हरा और पीला, नारंगी और जामनी, पर अकबर को कोई भी न सुहाया।
हमें ये रंग जच नहीं रहे रहमत, अकबर जरा तुनक कर बोले।
रजा ने देखा कि अब्बा के माथे पर परेशानी झलक रही थी।
हाय, अगर बादशाह सलामत को पटके पसंद नहीं आए तो क्या वे सारे कपड़े लौटा देंगे? मुझे फौरन कुछ करना होगा, उसने सोचा। उसने यहां वहां नजर दौड़ाई और अनायास बोल पड़ा,
हुजूर, क्या आप चटक लाल पर सफेद और पीली बुनकियों वाला देखना पसंद करेंगे?
कैसा लाल रंग, अकबर हुंकार कर बोले, दिखाओ हमें।
रजा ने धनी सिंह की पगड़ी की ओर इशारा किया, वैसा लाल।
अकबर ने धनी सिंह के मूछों वाले चेहरे को घूर कर देखा और कहा, ठीक है, देखते हैं।
रजा ने लपक कर धनी सिंह की पगड़ी थामी, उसके लपेटे सीधे करके अकबर की कमर पर बांध दी। जब तक अकबर आड़े टेढ़े होकर अपने आप को आईने में निहार रहे थे, वो सांस रोके खड़ा रहा। उसने देखा कि धनी सिंह मुस्कुरा रहे हैं। शायद उन्हें ये देखकर हंसी आ रही थी कि राजा साहब ने उनकी पगड़ी का पटका बना दिया था।
ये रंग हमें पसंद आया और नमूना भी बिल्कुल अलग है, आखिरकार अकबर ने फरमाया।
बांधनी हुजूर राजपूतों के देश से है, रजा का जवाब हाजिर था।
अच्छा, राजपूत, जैसे हमारी महारानी जोधाबाई, अकबर मुस्कुराए।
धनी, रहमत को अंगरखों और पटकों की कीमत अदा कर दो, हमें सारे चाहिए।
हुजूर, रजा संभल कर बोला, धनी जी को पगड़ी की जरूरत पड़ेगी, हमने उनकी वाली तो ले ली है,
उन्हें एक पटका दे दो। अकबर जोर से हंसे, वो धूले से नीले रंग वाला, उनकी पगड़ी तो अब हमने रख ली है।
कैसी लगी रजा की ये कहानी? अब देखते हैं इतिहास के कुछ रोचक तथ्य। रजा बादशाह अकबर के शासनकाल में अब से 400 साल पहले रहता था। अकबर मुगल राजवंश का सबसे महान राजा था। वो एक प्रसिद्ध योद्धा भी था।
उसे नए नमूनों के कपड़े पहनने का बहुत शौक था। वो पतंगबाजी और आम खाने का भी शौकीन था। बाबर मुगल राजवंश का संस्थापक काबुल का राजा था। उसने 1526 में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हरा दिया। अकबर बाबर का पोता था। वो भी एक बड़ा कामयाब सेनापति था और अपने 49 साल के शासनकाल में एक भी लड़ाई नहीं हारा। दो मुगल बादशाहों ने नए शहर बनवाए। अकबर ने आगरा के पास फतेहपुर सिकरी बनवाया और शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद। फतेहपुर सिकरी आज वीरान पड़ा है, पर शाहजहानाबाद आज पुरानी दिल्ली कहलाता है। इसमें आज भी लोग रहते हैं और वहां जिंदगी की चहल पहल बरकरार है। शाहजहां का मशहूर मयूर सिंहासन पिकॉक थ्रोन एक चौकोर चपटा आसन था। उसके हर कोने पर पतले खंबे थे जो बेशकीमती नगिनों से सजे हुए थे। आसन के ऊपर एक छत्र था जिसके ऊपर नगिनों से जड़ी मोर की आकृति थी। बादशाह इस छत्र के नीचे रेशमी गद्दियों की टेक लेकर बैठा करता था। कई मुगल राजकुमारियां बहुत पढ़ी लिखी थी। गुलबदन बेगम ने अपने पिता बाबर की जीवनी लिखी। शाहजहां की बेटी जहां आरा शायर थी। मुगलों के महलों में कई रसोई घर थे। हर रसोई घर से बादशाह के लिए खाना भेजा जाता। जाहिर है कि जब बादशाह सलामत खाने बैठते तो वे 30 किस्म के लजीज चीजों में से अपनी पसंद की चीज खाते। ओहो, मुंह में पानी भर आता है मुगलाई खाने का नाम आने पर। बिरयानी, पुलाव, कलिया, कुर्मा, ये सब पकवान मुगलई रसोई घरों से ही निकल कर आए हैं।
कहानी खत्म, मुझे और एक सुनिए, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.booksthatspeak.com पर। एरवावी, एरवावी।